بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متر، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتاؤں، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کر رہے ہیں۔ آج اب سورہ واقعہ کی آتما کو شانتی پردان کرنے والی پہلی سے لے کر سولہویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں سورگیے محمد صدیق منشاوی۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، جب وہ گھٹت ہونے والی مہان گھٹنا ارتھات قیامت گھٹ جائے گی اور اس کے گھٹت ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں، وہ گھٹنا الٹ پلٹ کر دینے والی ہوگی، اس سمے دھرتی کو بھوکمپ کے زبردست جھٹکے لگیں گے اور پہاڑ ٹوٹ کر چور چور ہو جائیں گے، تو وہ بکھری ہوئی دھول ہو کر رہ جائیں گے، اور تم لوگ تین پرکار کے ہو جاؤ گے، تو داہنے ہاتھ والے، اور کیا کہنا داہنے ہاتھ والوں کا، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیسے دربھاگی ہوں گے بائیں ہاتھ والے، اور آگے بڑھ جانے والے تو آگے بڑھ جانے والے ہی ہیں، وہی اللہ کے نکٹ ورتی ہیں، وہ سورگ کے نعمت بھرے باغوں میں ہوں گے، اگلوں میں سے تو بہت سے ہوں گے اور کچھ پچھلوں میں سے بھی ہوں گے، جو موتی اور یاقوت جڑے تختوں پر ٹیک لگائے آمنے سامنے बैठे होंगे।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा ये प्रसारण आप शार्टवे में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज सोमवार है, खुर्दाद की 23, जून की 13 और ज़ीक़ादा की भी 13 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा, उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे विश्व दर्पण और अंतिम कार्यक्रम होगा सेहत का राज। तो श्रोताओं, ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। अब आप सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान और वेनेजुएला ने कहा है कि वे संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि ईरानी विमान को जब्त किए जाने की खबर अफवाह है। आफरीन फातिमा ने कहा है कि हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी गई है। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में 5 अलगाववादियों की मौत हो गई है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान और वेनेजुएला के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संबंधों के विस्तार पर जोर दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो शुक्रवार को 2 दिन की तेहरान की यात्रा पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने और उनके साथ उनके शिष्टमंडल ने ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकातें की। इस बीच दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने दोनों देशों के बीच 20 वर्षीय समग्र साझेदारी के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ईसा जारेपुर ने रविवार की रात वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति और दूरसंचार मंत्री फ्रेडी अल्फोर्ड से मुलाकात की। इस अवसर पर जारेपुर का कहना था कि ईरान और वेनेजुएला के बीच पिछले 20 वर्षों के दौरान संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समेत विभिन्न क्षेत्रों में जबरदस्त सहयोग रहा है और दोनों देश भविष्य में अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस मुलाकात में अल्फर्ड का कहना था कि काराकास तेहरान के साथ अपने संबंधों को विशेष महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में सहयोग में विस्तार का इच्छुक है।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के संसद सभापति ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रस्ताव को शत्रुतापूर्ण करार दिया और कहा कि इस तरह के उपायों से राजनयिक प्रयासों को लाभ नहीं होगा। इस्लामी गणतंत्र ईरान संसद मजलिस शुरा इस्लामी के 260 सांसदों ने IAEA में ईरान विरोधी यूरोपीय संघ के प्रस्ताव की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया। ईरान के संसद सभापति मोहम्मद बाकिर गालिबोफ ने कहा है कि अंतर
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रस्ताव से वियना वार्ता को कोई फायदा नहीं होगा। ईरान के संसद सभापति ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रस्ताव को शत्रुतापूर्ण करार दिया और कहा कि इस तरह के उपायों से राजनयिक प्रयासों को लाभ नहीं होगा।
ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की किसी भी एयरलाइंस के विमान को किसी भी देश में जब्त नहीं किया गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खदीबजादे ने इस खबर का खंडन करते हुए कि अर्जेंटीना ने ईरान के एक विमान को जब्त कर लिया है, कहा कि किसी भी ईरानी कंपनी के किसी विमान को जब्त नहीं किया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में अर्जेंटीना की सरकार ने ब्यूनस आयरस हवाई अड्डे पर एक बोइंग 747 को जब्त किया है, जिसके बाद मीडिया में ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये विमान ईरान का है। खतीबजादे ने सोमवार को बताया कि ईरान की महान एयरलाइंस ये स्पष्ट कर चुकी है कि जो विमान अर्जेंटीना ने रोका है उसे एक साल पहले वेनेजुएला की एक एयरलाइंस को बेच दिया गया था। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना था कि अब इस बात का ईरान की महान एयरलाइंस से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की फेक न्यूज फैलाने के पीछे दुनिया में ईरान की छवि को खराब करना है।
एक अमरीकी वेबसाइट का कहना है कि ईरानी मिसाइलों में समय से पहले संभावित हमलावरों को जवाब देने की क्षमता है। अमरीकी विश्लेषक वेबसाइट ने लिखा है कि ईरान में विभिन्न प्रकार की मिसाइलों और ड्रोन के साथ आक्रामकता का जवाब देने की क्षमता पैदा कर ली है। अमरीकी सैन्य विश्लेषण वेबसाइट फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान के पास मध्य पूर्व में बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा और सबसे विविध भंडार है। 1945 वेबसाइट पर मध्य पूर्व रक्षा विश्लेषक माया करलिन लिखती हैं कि सैन्य क्षमता के मामले में ईरान की तुलना अमरीका, चीन और कई अन्य देशों से नहीं की जा सकती है। बड़ी संख्या में मिसाइलें बनाई गई हैं जो कोई इस देश पर आक्रमण करने या आक्रमण करने की कोशिश करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देगी। इस संबंध में ईरान की सिपाही पासदारान इंकलाब इस्लामी ने अपनी वार्षिक परेड में एक क्रूज मिसाइल का अनावरण किया। विशेषज्ञों के अनुसार इस हथियार के ट्रिपोजॉइडल नेटवर्क के पंख बताते हैं कि इसे किसी भी तरह से निर्देशित किया जा सकता है।
एक युवा मुस्लिम कार्यकर्ता की जिसका घर दक्षिणपंथी योगी सरकार के अधिकारियों ने गिरा दिया, कहा है कि उन्हें और उनके परिवार को पैगंबर इस्लाम के अपमान के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी गई है। रविवार को आफरीन फातिमा के घर को पुलिस की भारी भीड़ की मौजूदगी में बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया, जिससे दर्जनों पत्रकारों ने अपने कैमरे में कैद किया। देखते ही देखते दो मंजिला इमारत को मलबे में बदल दिया गया और फर्नीचर, किताबों और कुछ तस्वीरों को उठाकर नजदीक के खाली प्लॉट में फेंक दिया गया। इनमें एक ऐसा पोस्टर भी था जिस पर लिखा हुआ था, जब अन्याय कानून का रूप धारण कर ले तो प्रतिरोध कर्तव्य बन जाता है। ये विध्वंसक कार्रवाई सत्ताधारी बीजेपी पार्टी के दो नेताओं द्वारा पैगंबर इस्लाम के अनादर के कुछ दिन बाद भारतीय मुसलमानों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों के कुछ दिन बाद की गई है।
भारत के नागालैंड राज्य की पुलिस ने 4 दिसंबर 2021 को मून जिले के ओटिंग तिरु इलाके में सेना के एक अभियान के दौरान 14 आम लोगों की मौत के मामले में मेजर रैंक के एक अधिकारी सहित 21 पैरा स्पेशल फोर्स के 30 कर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में सैनिकों की टीम पर हत्या और गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है। आरोप पत्र से पहले की जांच में पाया गया कि स्पेशल फोर्स की अभियान टीम ने मानक संचालन प्रक्रिया और अभियान के दौरान नियमों का पालन नहीं किया तथा अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे 6 नागरिक की तत्काल मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। चुमाव के दीमा पुलिस परिसर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नागालैंड के पुलिस महानिदेशक टी जॉन लोंग कुमार ने कहा कि तीजीत पुलिस थाने का मामला दिसंबर 2021 की वोटिंग घटना से संबंधित है, जिसमें सेना की गोलीबारी में 14 लोग गलत पहचान के चलते मारे गए थे।
भारत नियंत्रित जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे के दौरान 5 छापामार मारे गए हैं। पुलिस ने दावा किया है कि हाल में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल लश्कर ए तैयबा का छापामार आदिल पर्रे रविवार को पुलिस की एक छोटी टीम के साथ अचानक हुई मुठभेड़ में मारा गया। कश्मीर पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। بتایا جاتا ہے کہ مٹ بھیڑ کرسبل پالپورا سنگم علاقے میں ہوئی. اس سال اب تک گھاٹی میں مارے گئے چھاپہ ماروں کی سنکھیا 100 ہو گئی ہے. رویوار کی صبح پلوامہ مٹ بھیڑ میں 2 اور چھاپہ مار مارے گئے تھے. پولیس کے ایک پروکتا نے بتایا کہ دکشنی کشمیر میں استھت پلوامہ ضلع کے درب باغ گاؤں میں آتنکوادیوں کی موجودگی کی سوچنا ملنے پر شنیوار کو علاقے میں سرکشا بلوں نے گھیرا بندی ایوم تلاشی ابھیان شروع کیا تھا.
شری لنکا کے بجلی پرادھیکرن کے پرمکھ نے ایک سنسدیہ پینل کے سامنے گواہی دی ہے کہ انہیں شری لنکا کے راشٹرپتی گوٹابایا راجپکش نے بتایا تھا کہ بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی نے 500 میگا واٹ کی ونڈ پاور پریوجنا کو سیدھے اڈانی سموہ کو دینے پر زور دیا تھا. رپورٹ کے انوسار اس دعوے پر پرتکریا دیتے ہوئے راجپکش نے کسی اکائی وشیش کو پروجیکٹ دینے کی بات سے انکار کیا. وہیں یہ سنسنی خیز دعویٰ کرنے کے 2 دن بعد بجلی پرادھیکرن کے پرمکھ نے یو ٹرن لے لیا. انہوں نے کہا کہ بھاوناؤں میں بہہ کر انہوں نے جھوٹ بولا تھا. سارجنک ادیموں کی سنسدیہ سمیتی کی ایک سنوائی میں سیلون الیکٹریسٹی بورڈ کے ادھیکش ایم ایم سی فرنینڈو نے کہا کہ شری لنکا کے راشٹرپتی نے ان سے کہا تھا کہ بھارتیہ پردھان منتری اڈانی سموہ کو 500 میگا واٹ کا ونڈ پاور ارجا سنیتر دینے پر زور دے رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے.
یہ تہران ہے اسلامی گانتانت ایران کی آواز.
راجنیتک چرچا.
شوتو راجنیتک چرچا کے دینک کارکرم میں محمد مہندی کا سلام سویکار کیجیے. نیشنل ہیرالڈ معاملے میں پوچھ تاچھ کے لیے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی اپنے سمرتھکوں کے ساتھ آج پرورتن نردیشالے پہنچے, جہاں کافی دیر تک ان سے پوچھ تاچھ کی گئی. کانگریس پارٹی کے کئی نیتاؤں نے دلی میں سڑکوں پر پردرشن کیا اور سرکار کی کاروائیوں کا کڑا ویروھ کیا. اتر پردیش کے پریاگ راج میں پرشاسن ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے نیتا اور کارکرتا آفرین فاطمہ کے پتا جاوید محمد کے گھر کو رویوار 12 جون کو توڑ دیا. پولیس کی بھاری تعیناتی کے بیچ دوپہر میں 2 بلڈوزر شہر کے کریلی استھت جاوید محمد کی آواز پر پہنچے. بلڈوزر کے آگے اور پیچھے کے گیٹ کو گرانے کے بعد گھر کے اندر رکھا نجی سامان نکال کر فاطمہ کی آواز کے بغل میں ایک خالی زمین پر پھینک دیا گیا. پولیس کا دعویٰ ہے کہ 10 جون کو ویرودھ پردرشن کا آہوان جاوید محمد نے ہی کیا تھا. اس کے بعد 11 جون کو ان کی آواز کو گرانے کا نوٹس پریوار کو سونپا گیا تھا, جس کے بعد پولیس کتھت طور پر پریاس کر رہی ہے کہ پریوار اپنا گھر چھوڑ دے, کیونکہ اس سمے پریوار کی کئی مہیلا سدسیہ گھر میں ہی رہ رہی تھیں. عراق میں ایک بار پھر راجنیتک سنکٹ گہرا گیا ہے. اس بار عراق کے ایک راجنیتک دھڑے دوارا ساموہک طور پر استعفی دیے جانے سے عراق کے راجنیتک حالات میں بھوچال آ گیا ہے. نیشنل ہیرالڈ معاملے میں پوچھ تاچھ کے لیے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی اپنے سمرتھکوں کے ساتھ آج پرورتن نردیشالے پہنچے, جہاں کافی دیر تک ان سے پوچھ تاچھ کی گئی. کانگریس پارٹی کے کئی نیتاؤں نے دلی میں سڑکوں پر پردرشن کیا اور سرکار کی کاروائیوں کا کڑا ویروھ کیا. پوری جانکاری کے ساتھ دلی سے شمشاد کاظمی.
नेशनल हिराल्ड भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज प्रियंका गांधी और अपने समर्थकों के साथ प्रवर्तन निदेशालय पहुंचे, जहां उनसे कथित रूप से भ्रष्टाचार के इस मामले में देर तक पूछताछ की गई। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के बाहर सड़क पर धरना दिया और सरकार की उनके अनुसार गैर संवैधानिक कार्रवाइयों का कड़ा विरोध किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिक अर्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा की सरकार हमें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रही है।
फजूल के केसेस डाल रहे हैं और जिसमें कोई तथ्य नहीं है, वैसे केसेस उठाकर ईडी का उपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का उपयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि देश में संविधान के तहत अपना हुक्म चलाए। जब वो ये नहीं कर रहे तो हम सड़क पे उतरे हैं, वो भी सत्याग्रह।
कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर ने देश की वर्तमान स्थिति को चिंताजनक बताया।
शांति भंग नहीं करना है और हम लोग पूरा कोऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चारों तरफ से पुलिस को लगा दिया गया है, जो नाकाबंदी हो गई है, ये बहुत ही दुखद है। लोकतंत्र में इस तरह से जनता की आवाज़ या किसी दल की आवाज़ को दबा देना अपने बलपूर्वक, ये ठीक।
कांग्रेस ने नेशनल हिराल्ड मामले में पूछताछ के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मिलने वाले नोटिस के विरुद्ध आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन को सत्याग्रह का नाम दिया।
हम वहाँ रहते हैं ना जहाँ पे अपनी बात को रखने के अधिकार है, ये कोई व्यवहार थोड़ी हुआ। आप ये देखिए इस तरीके से करना, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? ये एक पार्टी को टारगेट करना या विपक्ष को टारगेट करना ही नहीं है।
दिल्ली के अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया था और किसी को मुख्यालय की ओर जाने की अनुमति नहीं थी। विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को आसपास के विभिन्न स्थानों से हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध नारे लगाए और सरकार पर आरोप लगाया कि वह जहां एक ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर निराधार आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों को बोलने के संवैधानिक अधिकार से वंचित कर रही है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से ऐसे प्लेकार्ड जब्त कर लिए जिन पर सरकार विरोधी नारे लिखे थे। दिल्ली में धारा 144 लागू है, अतः किसी को विरोध प्रदर्शन के लिए जमा होने की अनुमति नहीं है। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी की प्रवर्तन निदेशालय में पेशी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन की आलोचना की और कहा कि देश की राजधानी में भ्रष्टाचार के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक जांच एजेंसी पर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार विपक्ष को डराने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सरकार विपक्ष के इस आरोप को निरंतर खारिज करती रही है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रशासन ने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और कार्यकर्ता आफरीन फातिमा के पिता जावेद मोहम्मद के घर को रविवार 12 जून को तोड़ दिया। पुलिस का दावा है कि 10 जून को विरोध प्रदर्शन का आह्वान जावेद मोहम्मद ने ही किया था। मोहम्मद जावेद की पुत्री का कहना है,
देखिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अचानक से हमारा घर अवैध कैसे हो गया, जब हमारे घर में हर बार हम लोग वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, हर चीज पे कर रहे थे, तो वो अचानक से बिना किसी नोटिस के एक दिन के अंदर ही अंदर अवैध हो गया। नोटिस छपी और एक दिन के अंदर ही अंदर वो टूट गया, उसको पूरा तोड़ दिया गया। ये सब 12 घंटे के अंदर हुआ है। इससे पहले ना ही हमारे घर में कभी कोई नोटिस आई, ना ही हम लोग को कभी कुछ बताया गया कि ऐसा है ऐसा नहीं है। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि ये घर जो हमारा था ये हमारे अब्बू के नाम पे था ही नहीं, ये घर हमारी अम्मी के नाम पे था, ये मदर के नाम पे, जो मेरे नाना ने उनको गिफ्ट के तौर पे दिया गया था। इसमें ना ही हमारे अब्बा का कोई हाथ था, ये गिफ्ट हमारी अम्मा, मतलब जमीन हमारे अम्मा की थी और उसको अवैध बताकर इन्होंने तोड़ दिया। हमारा घर 20 साल पुराना है, हम लोग 20 साल से उस घर में रह रहे हैं और हमारे मोहल्ले में सारे घर वैसे ही बने हुए हैं। आप लोग जब वीडियोस देखेंगे तो उसके आसपास के जो घर दिखेंगे वैसे ही दिखेंगे, कोई बहुत अलग से घर नहीं दिखेंगे कि उसमें प्रॉपर तरीके से बनाया गया हो। ये साफ तौर पे एक तरीके से देखा जाए तो जो हुआ है उसी पे कार्रवाई है। ये हमारे घर पे पहले नोटिस भेजते अगर ऐसा मामला था, और पहले नोटिस भेजने के बाद भी टाइम देते हैं, इन्होंने एक दिन रात में हमें नोटिस भेजा, हमारे घर के सामने एक पेपर लगाया और उसको दूसरे दिन सवेरे आके तोड़ दिया। अब देखिए इसके बारे में तो हम खुद भी नहीं जानते कि क्यों हमारी फैमिली को निशाना बनाया गया। हमारे अब्बू, हमारे फादर बहुत ही वेल रेप्यूटेड आदमी है, उनके पूरी मतलब हमारी लोकेलिटी में बहुत रिस्पेक्ट है, उनके पास लोग मदद के लिए आते थे, जब वो लोग परेशान रहते थे तो वो लोग उनके पास मदद के लिए आते थे। हमने हमेशा अपने फादर को एज अ रिस्पेक्टेड और सबके मदद आते हुए देखा है। अचानक से इनको पता नहीं कैसे क्या हुआ, हमेशा ऐसा भी नहीं है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत अलग थे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमेशा उन्होंने कॉपरेशन करा, उनकी बहुत अच्छी जान पहचान थी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, बाकायदा के साथ। जब कोरोना का टाइम हुआ था, हमारे फादर कब्रिस्तान कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने फुल सहयोग दिया था एडमिनिस्ट्रेशन का उस टाइम पे भी, और कब्रिस्तान में जो इंक्रोचमेंट था उसको हटवाने में भी उन्होंने फुल सहयोग दिया था।
ये थी मोहम्मद जावेद की बेटी। इराक में एक बार फिर राजनीतिक संकट गहरा गया है। इस बार इराक के एक राजनीतिक धड़े द्वारा सामूहिक तौर पर इस्तीफा दिए जाने से इराक के राजनीतिक हालात में भूचाल आ गया है। साथ ही रविश जैदी।
इराक में एक बार फिर राजनीतिक संकट गहरा गया है। इस बार इराक में एक राजनीतिक धड़े द्वारा सामूहिक तौर पर इस्तीफा दिए जाने से इराक की राजनीति में भूचाल आ गया है। अप्रत्याशित तौर पर रविवार की रात सदर धड़े के प्रमुख मुक्तदा सदर ने अपनी पार्टी के संसदीय दल के नेता को इस बात के लिए मजबूर किया कि वो सदर धड़े के 73 सांसदों के इस्तीफे को इराकी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद अल अलबौसी को सौंप दे। अलबौसी ने भी ऐलान किया कि वह आंतरिक मतभेदों के बावजूद इस्तीफों को स्वीकार कर रहे हैं। सदर धड़े के सांसदों द्वारा सामूहिक तौर पर दिए गए इस्तीफे के बाद विश्लेषकों ने इराक में राजनीतिक संकट गहराने की भविष्यवाणी की है कि जिसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। इराक के एक राजनीतिक जानकार का कहना है कि इस कार्रवाई के दो नतीजे सामने आ सकते हैं। पहले ये कि इस कदम से देश की संसद भंग हो जाए और एक बार फिर इराक में संसद के चुनाव हों। दूसरे ये कि सदर धड़े के सांसदों के इस्तीफे से इराक में अस्थिरता अपने चरम पर पहुंच जाए, जिसकी वजह देश की सरकार और राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर होने वाले विरोध प्रदर्शन होगी। सदर धड़े द्वारा उठाए गए कदम को लेकर राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि ये मुक्तदा सदर द्वारा इसलिए किया गया है क्योंकि वो 8 महीनों में सरकार का गठन करने में नाकाम रहे हैं, जिसके लिए वो सुन्नी पार्टियों और मसूद बारिजानी के नेतृत्व वाली इराकी कुर्दिस्तान पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं। सदर धड़े के सांसदों द्वारा सामूहिक तौर पर दिए गए इस्तीफे के बाद अब इराक के चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो 1 महीने के अंदर संसद के लिए नए सभापति को चुने, लेकिन इस शर्त के साथ ही कि उस समय तक इराक में राजनीतिक रूप से कोई नई घटना न घटी हो। बगदाद से IRIB के लिए जलाल खालिदी की रिपोर्ट।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा सेहत का राज, पर उससे पहले आप सुनिए दूसरा साप्ताहिक कार्यक्रम विश्व दर्पण।
विश्व दर्पण। श्रोताओं, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है इमाम खुमैनी का व्यक्तित्व। ईरान के इस्लामी इनकलाब के संस्थापक इमाम खुमैनी की 33वीं बरसी गत 4 जून को मनाई गई। इस उपलक्ष्य में ईरान के साथ ही दुनिया के अनेक देशों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इमाम खुमैनी के योगदान को याद किया गया। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि इमाम खुमैनी की विचारधारा और उनसे मिले पाठ मौजूदा और आइंदा दौर के लिए बेहतरीन रोड मैप पेश करते हैं। बरसी के मौके पर तेहरान के करीब स्थित इमाम खुमैनी के मज़ार पर बहुत शानदार कार्यक्रम श्रद्धा के माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर काफ़ी बड़ा मजमा एकत्रित हुआ और इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा खामेनेई ने तकरीर की। उन्होंने अपनी तकरीर में इमाम खुमैनी के व्यक्तित्व और उनकी विचारधारा पर प्रकाश डाला। सुप्रीम लीडर का कहना था कि इमाम खुमैनी इस्लामी जमहूरियत की रूह हैं। अगर इस्लामी जमहूरियत से इस रूह को निकाल लिया जाए और इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये बेजान तस्वीर बनकर रह जाएगी। आज हमारी स्पीच व प्रिय महान इमाम खुमैनी की शख्सियत के पहलुओं के बारे में है। उनका कहना था कि अलबत्त पिछले बरसों में विगत के कुछ बरसों में इमाम खुमैनी की शख्सियत के पहलुओं के बारे में बहुत सी बातें हुई, लेकिन अब भी बयान करने के लिए बहुत कुछ है।
ابعادی از شخصیت امام صحبت شده است، ما صحبت کردیم، دیگران صحبت کردند، لکن با وجود این ناگفته ها هنوز بسیار است.
नॉर्वे स्थित वरिष्ठ टीकाकार हुसैन हैदर का मानना है कि इमाम खुमैनी की शख्सियत ऐसी थी जो सदियां गुजर जाने के बाद भी कभी कभी पैदा होती हैं। इमाम खुमैनी पूरी कौम का स्वभाव और मिजाज बदलने में कामयाब रहे। उन्होंने हमेशा सादा जीवन गुजारा।
आज दुनिया में तकरीबन 8 अरब के करीब लोग रहते हैं, और लेकिन आप ये देखिए कि इंसान पैदा होता है, तालीम हासिल करता है, नौकरी करता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं और वो दुनिया से चले जाता है। तो ये 8 अरब इंसानों की अक्सरियत इसी तरह जिंदगी गुजारती है, लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो सदियों में पैदा होती हैं, और इमाम खुमैनी उन्हीं ऐसी ही एक ऐसी शख्सियत थे जो सदियों में कहीं पैदा होते हैं। और उन्होंने जो यानी आप तो एक सियासी इनकलाब है जो आप कह सकते हैं कि जी शाह जो रजा शाह पहलवी का इक्तदार का खात्मा है, उसके बाद ईरान में एक जो है वो अवामी इस्लामी हुकूमत का क्याम है, लेकिन मैं समझता हूँ जो ज्यादा बड़ा इनकलाब है वो एक यानी इमाम खुमैनी का वो समाजी इनकलाब है। वो इनकलाब ये है कि देखिए कौम के अंदर खुददारी पैदा करना, उनके अंदर इस्तकामत पैदा करना, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की कुव्वत अदा करना, ये वो चीजें हैं कि जो हमें आजकल जो हम दुनिया में देखते हैं जो सियासतदान होते हैं वो किस तरह छोटी छोटी मफादात के लिए अपने कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं, लेकिन इमाम खुमैनी की जिंदगी में हमें मिलता है कि वो शख्स इख्तदार से पहले भी इख्तदार के बाद भी उनकी जिंदगी में सरे मुंह कोई फर्क नहीं आया, ना उनके नजरियात में कोई फर्क आया। यानी मुझे याद है एक इंटरव्यू मैंने देखा था इमाम खुमैनी का, जब वो जब आप पेरिस में थे और इनकलाब से कुछ अर्से पहले एक मगरबी सहाफी ने उनसे सवाल किया फलस्तीन के बारे में, तो आपने कहा कि देखें जब दुनिया में जहां भी मजलूम होंगे हम उसकी हिमायत करेंगे। जब उनसे सवाल किया गया इसराइल के बारे में तो इमाम खुमैनी ने कहा कि देखिए इस्लाम इसराइल जो है वो एक गासिब हुकूमत है और इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम एक गासिब हुकूमत की हिमायत करें।
आयतुल्लाह खामेनेई का कहना है कि इमाम खुमैनी सिर्फ कल के इमाम नहीं थे बल्कि आज के भी और आइंदा कल के भी इमाम हैं।
इमाम फकत इमाम दीरूज नीस्त, इमाम इमरूज हम हैस, इमाम फर्दा हम हैस।
पाकिस्तान की मिल्ली एकजहती काउंसिल के प्रमुख अबुल खैर मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि इमाम खुमैनी के इनकलाब से दुनिया के मजलूम मुसलमानों को उम्मीद की किरण नजर आई।
इमाम खुमैनी की क़यादत में ईरान के अंदर जो इस्लामी इनकलाब बरपा हुआ उसके न सिर्फ ये कि आलम इस्लाम पर बल्कि पूरी दुनिया पर बड़े गहरे और बड़े मुस्बत असरात मुरतब हुए कि जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे ان کو ایک سہارا نظر آیا, ان کو ایک امید کی کرن نظر آئی.
اسلامی کرانتی کے نیتا کا کہنا تھا کہ امام لوگوں کو میدان میں لائے, اپائے بتایا اور انہیں موجود رکھا میدان کے اندر, ان کے من سے شک و نا امیدی کو دور کیا. اس ملک میں کوئی اور ایسا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. راجنیتک ہستیاں تو موجود تھیں, آدھیاتمک شخصیتیں بھی موجود تھیں جن کو لوگ جانتے بھی تھے اور انہوں نے کارنامے بھی انجام دیے, لیکن اتنا بڑا کارنامہ انجام دینا کیول امام خمینی کا کام تھا.
اون عبارت بود از امام بزرگوار, او عبارت بود از خمینی عظیم.
پاکستان کے مولانا محمد حسنین مبلغی ایک ورشٹھ دھرم گرو ہیں. ان کا کہنا ہے کہ امام خمینی علم, عمل اور نشٹھا سہت انیک میدانوں کی بہت بڑی ہستی تھے.
وہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ آل اللہ مقامہ, اسی کے ذات گرامی کو اگر دیکھا جائے تو اسے عارف کامل, ایک طرف سے علم کی, ایک طرف سے عرفان اور عمل کی میدان میں بھی, سب سے اخلاص کی میدان میں بھی, ہر لحاظ سے جو اس قابلیت اور اس رہبر کے اندر انقلاب لانے والی اندر, اور اسی کے ساتھ ان کا جو اخلاص ہے, خلوصیت ہے, اسی وجہ سے اس انقلاب کو دن بدن اس کی ترقی اور اس کے آگے دنیا میں پھیلتے جا رہا ہے.
امام خمینی کے ویکتتو پر پرکاش ڈالتے ہوئے سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ امام کی ویکتیگت خوبیوں کا جہاں تک سمبندھ ہے, مہان امام خمینی صحیح ارتھ میں ایک غیر معمولی انسان تھے. ان کی ویکتیگت خوبیاں ایسی خوبیاں تھیں جو ایک ساتھ شاید ہی کسی ایک شخصیت میں اکٹھا ہوں, کوئی دوسرا ایسا نظر نہیں آتا.
وش درپن, انتراشٹریہ گھٹنا کرموں کی نبض ٹٹول کر وش بھر میں ہونے والے پریورتنوں کی تہ تک جانے والا کارکرم وش درپن. ہر ہفتے سوموار کو
سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ امام خمینی بہت ہی پاک اور پرہیزگار انسان تھے. امام خمینی کی شخصیت ایسی تھی کہ جو سچ میں اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے. دوسری ان کی بڑی خوبی یہ تھی کہ روحانی اور عرفانی حالت میں ڈوبے رہتے تھے. وہ ایک آدھیاتمک اور روحانی ویکتی تھے. رات کے سمے نماز پڑھتے تھے تو اس طرح سے روتے تھے کہ آنسو پوچھنے کے لیے انہیں تولیے کی ضرورت پڑتی تھی. یہ بات امام خمینی کے بیٹے نے بتائی.
مرحوم آقای حاج احمد آقا به بنده گفت که سحرها که امام بلند میشن و گریه میکنن در نماز و در دعا, این دستمال معمولی که ایشون دارن کفاف نمیده, برای ایشون حوله میگذاریم.
پاکستان کے ورشٹھ سنی اسلامک اسکالر مخدوم سید علی رضا گیلانی تو امام خمینی کے نظریے اور وچاروں کی خوشبو کی بات کرتے ہیں.
ہمیں ایران کے کلچر میں, ایران کے معاملات میں ایک ایسی پاکیزگی کی خوشبو آتی ہے, اور یہ خوشبو یقیناً اس آل نبی اولاد علی حضرت امام خمینی کی افکار کی خوشبو ہے, ان کی تربیت کی خوشبو ہے, اور انہوں نے احسن انداز سے اپنی قوم کو ابھارا اور ایک اسلامی انقلاب برپا کیا.
اسلامی انقلاب کے نیتا آیت اللہ العظمیٰ خامنے کا کہنا ہے کہ وچار دھارا, اصول اور ادیشی کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو امام خمینی کی سنگھرش پر آدھارت وچار دھارا کی بنیاد اور ان کے انقلاب کو ایک جملے میں اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. یعنی انہوں نے اپنا سارا مشن اللہ کی مرضی اور اللہ کی اچھا کے لیے काम करने पर केंद्रित रखा। लक्ष्य अल्लाह के लिए उठ खड़ा होना था। अल्लाह के लिए आंदोलन हमेशा एक तरह से नहीं होता, बल्कि इन सभी में अल्लाह के लिए आंदोलन का सिर्फ एक उद्देश्य है, और वो सत्य को कायम करना है, न्याय को कायम करना और अध्यात्म को फैलाना। ये सभी दौर में है, यानी हक को कायम करना अल्लाह के लिए आंदोलन। किसी दौर में उस तरह के संघर्ष की शक्ल में होता है, किसी अन्य दौर में वैज्ञानिक काम की शक्ल में होता है, किसी अन्य दौर में राजनीतिक सरगर्मियों की शक्ल में होता है। भारत के विश्व शांति परिषद के प्रमुख फैज अहमद फैज इमाम खुमैनी की बरसी के उपलक्ष्य में अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त करते हैं।
हजरत आयतुल्ला खामनाई के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो दुनिया में बैनुल मजाहिब को लेकर जिस कदर फिक्रमंद हैं, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हमें दहशतगर्दी का मुकाबला अगर करना है तो अपने इख्तलाफात को भूलकर आगे बढ़ना होगा और मोहब्बत और कुर्बत का दर्स देना होगा। इसी के साथ साथ मैं उलमा हजरात से और ख़ासकर सुन्नी उलमा हजरात से भी अपील करूंगा कि वो अपने बयानात और अपने खिताब में इस बात को तरजीह दें कि वो शिया और सुन्नी के बीच में मोहब्बत और उख़वत का दर्स दें। हज़रत खामनाई का ये मिशन है कि पूरी दुनिया के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो दहशतगर्दी से लड़ने के लिए उनके साथ खड़े हों और उनका साथ दें। और मैं भी ये गवाही देना चाहता हूँ कि खामनाई की लीडरशिप में अगर पूरी दुनिया का मुसलमान आगे आता है तो दहशतगर्दी का मुकाबला हम बखूबी अंजाम दे सकते हैं।
कैनेडा स्थित जाने माने टीकाकार डॉक्टर जफर बंगश का कहना है कि इमाम खुमैनी ने दुनिया को एक नया नजरिया और नया विजन दिया है।
जब इस्लामी इनकलाब कामयाब हुआ तो उस वक्त दुनिया दो कुवतों के दरमियान फंसी हुई थी। एक तरफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म कैपिटलिज्म था और दूसरी तरफ कॉम्युनिज्म। बल्कि ये एक्चुअली मैं ये अर्ज करूंगा कि कम्युनिज्म भी वेस्ट का ही हिस्सा है और था। अब तो खैर कम्युनिज्म नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये एक ही खोक से निकले थे। जबकि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो नजरिया पेश किया, आपने फरमाया, क्योंकि उनका एक स्लोगन भी था, आपने जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है उसको भी रिजेक्ट किया और ईस्टर्न कम्युनिज्म जो है उसको भी रिजेक्ट किया और खालिस एक इस्लामी नजरिया पेश किया, जिसके तहत इस्लामी इनकलाब जो है वो कामयाब हुआ और उसके बाद इस्लामी जमहूरिया ईरान जो है वो मौरज़ वजूद में आया।
हकीकत तो यह है कि इमाम खुमैनी ने एक नए युग की शुरुआत की जिसमें बहुत सारी चीजें बदल गईं। अब यह अलग बात है कि बड़ी ताकतें और उनके पिट्ठू इस बदलाव को हजम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि तस्वीर बदल चुकी है। श्रोताओ, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔
صحت کا راز، دوستو کارکرم صحت کا راز کے کنیا کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور سید نسم کا سلام سویکار کیجیے۔ آج ہم آپ کو خوبانی کے لابھ اور اس کی اپیوگتا کے بارے میں بتائیں گے۔
آج ہم ایسے پھل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کو آپ نے بھی اوشیہ کھایا ہوگا۔ اس پھل کا نام ہے خوبانی۔ خوبانی گٹھلی والا ایسا گودے دار پھل ہوتا ہے جسے کچا اور سکھا کر دونوں روپ میں کھایا جاتا ہے۔ اس کا سواد تھوڑا سا کھٹ میٹھا ہوتا ہے۔ یہ رسدار پھل ہوتا ہے۔ یہ سامانیتہ گرمیوں میں پیدا ہوتا ہے، لیکن سوکھی ہوئی خوبانی ہمیشہ بازار میں اپلبدھ رہتی ہے۔ خوبانی کو انگریزی میں ایپریکوٹ کہتے ہیں، جبکہ اس کا وانسپتک نام ولگیریس آرمینیا کا ہے۔
की सड़न या उनके घिस कर टूटने की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। सूखी हुई खुबानी की एक विशेषता ये होती है कि वो खाने को हजम करके कब्ज की शिकायत को दूर करती है, इसीलिए इसके दैनिक प्रयोग से कब्ज की समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके लिए पहले सूखी हुई खुबानी को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, उसके बाद रात भर इसको पानी में भिगोकर रखना चाहिए। सुबह में उठकर इसके पानी को पीने से पेट साफ होता है।
दोस्तों, अंत में हम खुबानी के लाभों के बारे में इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये वात और कफ को दूर करने के साथ शरीर की कमजोरी को भी दूर करती है। कब्ज में ये फायदेमंद है। खाली पेट खाने से ये शुगर में फायदा पहुंचाती है। अगर खुबानी को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया जाए तो ये कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने में सक्षम है। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। खुबानी खाकर बार बार प्यास लगने की समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। खुबानी से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, ये खांसी को भी दूर भगाती है। खुबानी खाने से कील, मुहासे, त्वचा के इन्फेक्शन आदि से भी बचा जा सकता है।
तो दोस्तों, खुबानी के इतने अधिक लाभ जानने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको अधिक मात्रा में प्रयोग कर बैठें, जिससे आपको लाभ की जगह नुकसान हो जाए। एक दिन में खुबानी के 5 से 6 फलों का प्रयोग पर्याप्त बताया जाता है। इसे अधिक खाने से नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और हमें अनुमति दीजिए।
श्रोताओं, ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। सभा के अंत में इस मुख्य समाचारों का सारांश एक बार फिर सुन लें। ईरान और वेनेजुएला ने कहा है कि वे संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि ईरानी विमान को जब्त किए जाने की खबर अफवाह है। आफरीन फातिमा ने कहा है कि हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी गई है। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में 5 अलगाववादियों की मौत हो गई है। इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। Thank you.